नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली दो नई अमृत भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद को कतई बर्दाश्त न करने संबंधी भारत का पक्ष दृढ़ता से रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए, लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की व्यावहारिकता की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की। अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकाबंदी हटाने और युद्ध समाप्त करने के बदले होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के ईरान के नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एकतरफा मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। वे वाराणसी में महिला सम्मेलन में शामिल होंगे और लगभग 6,350 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं शामिल होंगी।
इस विशाल महिला सम्मेलन में 40,000 से ज्यादा महिलाओं के भाग लेने की उम्मीद है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था भी महिला सुरक्षा कर्मियों द्वारा ही संभाली जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कई विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे, जिनमें जल जीवन मिशन के तहत 30 ग्रामीण पेयजल योजनाएं, चंद्रावर्ती घाट का पुनर्निर्माण, सारनाथ के पास सारंगनाथ मंदिर का विकास और नगवा स्थित संत रविदास पार्क का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कार्य शामिल है। इस क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री यूपी कॉलेज में सिंथेटिक हॉकी टर्फ का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री तिब्बती अध्ययन केंद्रीय विश्वविद्यालय में सोवा रिगपा भवन और अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जो आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ पारंपरिक चिकित्सा को एकीकृत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री इस मौके पर लगभग 5,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की 112 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें 80 घाट, दशाश्वमेध घाट और नमो घाट सहित प्रमुख घाटों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास शामिल है। प्रधानमंत्री बनास डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के दूध उत्पादकों को 105 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोनस भी बांटेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
प्रधानमंत्री आज शाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस और पुणे के हडपसर तथा अयोध्या और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए चलेंगी। इन ट्रेनों के जरिए किफायती और आधुनिक यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा, साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच संपर्क में भी विस्तार होगा। बनारस पुणे सेवा से काशी विश्वनाथ धाम तक पहुँच आसान हो जाएगी, जबकि अयोध्या मुंबई सेवा से श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र से अन्य धार्मिक स्थलों के बीच संपर्क बेहतर होगा। इन दो नई सेवाओं के शुरू हो जाने के साथ ही चालू अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की कुल संख्या बढ़कर 66 हो जाएगी। वहीं तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने से जुड़ा प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम और राष्ट्रीय राजमार्ग 19 तक पहुंच को बेहतर बनाएगा, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ रेल संपर्क भी बढ़ेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री हरदोई जाएंगे और गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम राज्य के 50वें स्थापना दिवस के समापन समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी राज्य में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम की समावेशी विकास के लिए बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यटन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इन प्रमुख परियोजनाओं में नामसी जिले के यांगंग में आयुर्वेद हॉस्पिटल की आधारशिला रखना शामिल है। साथ ही यांगंग में ही सिक्किम विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन किया जाएगा। इस दिन को अधिक यादगार बनाने के लिए सिक्किम सरकार एकता के 1000 कदम थीम पर एक वैभव सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। सिक्किम की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाएगा। मायनक के साथ मैं मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। श्री सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान वे विश्व में व्याप्त सुरक्षा चुनौतियों के बीच वैश्विक शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेंगे। रक्षा मंत्री आतंकवाद और उग्रवाद को कतई बर्दाश्त न करने संबंधी भारत के रुख को दृढ़ता से रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे लद्दाख में जिलों की कुल संख्या 7 हो गई है। एक रिपोर्ट।
नवगठित जिले नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास हैं। इससे पहले लद्दाख में केवल 2 जिले लेह और कारगिल थे। इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि यह निर्णय क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग और आकांक्षाओं को पूरा करता है। उन्होंने कहा यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के दृष्टिकोण के अनुरूप है। गृह मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त इस निर्णय का उद्देश्य जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करना और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना है। लेह लद्दाख से यांगचांग डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC के कार्यान्वयन की व्यावहारिकता की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई करेंगी। ये समिति उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों द्वारा अपनाए मॉडल की जांच करेगी। समिति को एक मसौदा बिल सहित 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। दिल्ली विधानसभा में आज एक दिन का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। उत्तराखंड राज्य विधानसभा में भी आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। ईरान ने अपने बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी हटाने और युद्ध समाप्त करने के बदले में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने की पेशकश की है। ईरान ने नए प्रस्ताव में कहा है कि उसके परमाणु कार्यक्रम के व्यापक मुद्दे पर चर्चा बाद में की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ईरान परमाणु वार्ता से जुड़े बिना हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौते की पेशकश करते हुए अपने राजनयिक प्रयास बढ़ा रहा है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जहां दोनों पक्षों ने अपनी साझेदारी को रणनीतिक बताया। श्री अराक्ची ने कहा कि अमरीका अपने युद्ध उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है और अब वार्ता का प्रयास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने कहा है कि खाड़ी में लगभग 20,000 नाविक फंसे हुए हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने वैश्विक व्यापार की रक्षा के लिए सभी पक्षों से जल डमरू मध्य को तुरंत खोलने का आग्रह किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ चर्चा की है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने बताया कि श्री ट्रंप जल्द ही इस विषय पर बात करेंगे।
मैं राष्ट्रपति या उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा से आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैं बस यह दोहराना चाहूंगी कि ईरान के संबंध में राष्ट्रपति की रेड लाइंस बहुत स्पष्ट कर दी गई हैं। मैं यह नहीं कहूंगी कि वे इस पर विचार कर रहे हैं। मैं बस इतना कहूंगी कि आज सुबह इस पर चर्चा हुई थी, जिस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, पर मुझे पूरा यकीन है कि आप राष्ट्रपति की बहुत जल्द सुनेंगे।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गर्मी के मौसम में लू की स्थिति को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तैयारियां करने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के आधार पर अप्रैल से जून 2026 तक पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीप में सामान्य से अधिक लू चलने की संभावना है। मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर लू प्रबंधन के लिए समर्पित इकाइयां स्थापित करने, एम्बुलेंस सेवाओं की तैयारी सुनिश्चित करने और एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल IHIP पर लू के मामलों की जानकारी देने का निर्देश भी दिया है। रोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
इस बीच देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गुजरात के अहमदाबाद में कल तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
भीषण हीट वेव परिस्थितियों के जवाब में अहमदाबाद नगर निगम ने एक व्यापक हीट एक्शन प्लान सक्रिय कर दिया है। पहली बार नागरिकों को दोपहर के चरम घंटों के दौरान वास्तविक समय में हॉटस्पॉट और वार्डवार तापमान की निगरानी करने में मदद के लिए QR कोड आधारित प्रणाली शुरू की गई है। मई के शुरुआत तक पारा 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना को देखते हुए प्रशासनिक टीमें पूरे राज्य में गर्मी से संबंधित आपात स्थितियों से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खूंट, आकाश समाचार, अहमदाबाद।
वहीं राजस्थान में तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि का आम जनजीवन पर असर पड़ा है।
कल जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इसके अलावा बाड़मेर, फलोदी, चूरू, कोटा, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। कई शहरों में रात का पारा भी 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। भीषण गर्मी से बिजली की खपत भी बढ़ी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 24 घंटे हीट वेव का दौर जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान कहीं कहीं आंधी चलने के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। और अब बात खेलों की। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल रात दिल्ली में एक तरफा मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स 16 ओवर और 3 गेंद में सिर्फ 75 रन ही बना सका। बेंगलुरु ने 9 विकेट शेष रहते सिर्फ 7 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
धन्यवाद विशाल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता आज के अधिकांश अखबारों की मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौता, 100% भारतीय निर्यात पर कोई शुल्क नहीं, डेयरी उत्पाद रियायतों से बाहर रखे गए। हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, भारत न्यूजीलैंड व्यापार समझौता एक बड़ी खुशखबरी है, हमारे लिए हर बाजार और हर निवेश कीमती है, केवल अमरीका पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, देश की जरूरतों के हिसाब से भारतीय निर्यात का बढ़ना जरूरी है ताकि उत्पादन की रफ्तार में कमी न आए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार समाप्त होने को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। जनसत्ता की सुर्खी है, आखिरी दिन रैलियों और नारों के साथ थमा प्रचार, 142 सीटों पर चुनाव कल। वहीं देश बंधु ने चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की चेतावनी को दिया है, फर्जी वोटिंग करने वालों को भेजेंगे जेल। नया प्रहार शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में ड्रग कार्टेल खत्म करने की तैयारी, ड्रग तस्करी नेटवर्क तोड़ने में जुटी केंद्रीय एजेंसियां। पत्र लिखता है, नक्सल मुक्त भारत अभियान की सफलता के बाद अब मादक पदार्थों की तस्करी समाप्त करने की केंद्र सरकार की तैयारी, राज्यों को टॉप 10 ड्रग कार्टेल चिन्हित करने के निर्देश। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच ईरान की हॉर्मूज स्ट्रेट खोलने की पेशकश दैनिक जागरण सहित कई अखबारों में है। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ईरान और अमेरिका की तनातनी में रूस की एंट्री, रूस पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए रूस सब कुछ करेगा। लिव इन रिलेशन पर सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणी नवभारत टाइम्स में है। लिव इन पर बोला सुप्रीम कोर्ट, 15 साल साथ बच्चा हुआ अब क्राइम कैसे, विवाह का कानूनी बंधन न होने पर साथ रहने वाले पक्ष कभी भी अलग हो सकते हैं और यही ऐसे रिश्तों का जोखिम है।
धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। वे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली दो नई अमृत भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद को कतई बर्दाश्त न करने संबंधी भारत का पक्ष दृढ़ता से रखेंगे। अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकाबंदी हटाने और युद्ध समाप्त करने के बदले होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के ईरान के नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।